मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आप सबसे अपनी ओर से कोई भी बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात ही नहीं करने जा रहा हूं। मैं बात करूंगा और मैं अपनी बात न करके मैं आज किसी दूसरे के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं, और ये जो दूसरा है ये बहुत बड़ा नाम है, और खासकर व्यक्तिगत तौर पर मैं और मेरी पत्नी बहुत ही श्रद्धा के साथ इन्हें देखते हैं। हो सकता है कि जब मैं उनके लिखे हुए शब्द, बल्कि ज्यादा बेहतर होगा कहूं कि मैं उनके बोले हुए शब्द जो लिखित रूप में मेरे पास हैं, मैं आपके सामने रखूं तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन है, और डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि ये कौन है। इसलिए मैं इन्होंने कहीं एक लिटरेचर फेस्टिवल में जो बातें कही थी, वे बातें जो मुझे लिखित रूप में कहीं मिली हैं, मैं उन्हें आप सबके सामने ज्यों का त्यों पढ़कर सुना रहा हूं। तो आज मैं आप सबके सामने एक वाचक की भूमिका में हूं, और खासकर ये जो बात है ये पेरेंट्स के लिए है, तो पेरेंट्स मुझे इस बात के लिए माफ करेंगे कि मैं उन्हें कुछ बताने जा रहा हूं, मैं उन्हें कुछ समझाने जा रहा हूं। दरअसल यह टुकड़ा जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लिखने का ढंग, कहने की ईमानदारी, बताने की सरलता, सहजता और जीवन के लिए इसकी उपयोगिता, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, यह बात मुझे अपने जो प्रिय श्रोता हैं जिनमें बहुत से पेरेंट्स हैं, और अगर पेरेंट्स नहीं है तो ठीक है, आगे चलकर के वो पेरेंट्स बनेंगे, उन तक पहुंचानी ही चाहिए। तो दोस्तों मैं अब सीधे सीधे उनके कहे हुए शब्दों को पढ़ रहा हूं। देखिए क्या कहती हैं, कहती हैं, मैं ये बता दूं। किसी जमाने में जब मैं युवा थी, मेरी शादी नारायण मूर्ति से हुई थी। एक दिन मूर्ति ने मुझे बताया, मुंबई के एक बड़े रईस ने हमें डिनर पर बुलाया है। कफ परेड में उनका बड़ा बंगला था। मैं बेहद सामान्य परिवार से थी, एक डॉक्टर और प्रोफेसर की बेटी। मैं पहली बार किसी रईस का घर देखने वाली थी। हम उनके घर गए, चांदी की थालियों में खाना परोसा गया। डिनर के बाद जब हम घर आए तो मेरे मुंह से निकला, सो पुअर, यानी कि बेहद गरीब। नारायण मूर्ति बोले, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने कहा, उनके ड्राइंग रूम में एक भी किताब नहीं थी। दोस्तों अब मैं नाम बताना चाहूंगा, ये शब्द हैं सुधा कृष्ण मूर्ति जी के, जो नारायण मूर्ति जी की पत्नी है। हाल ही में मेरी एक पुरानी स्टूडेंट मेरे पास अपनी बिटिया को लेकर आई और बोली, मेरी बेटी बिल्कुल नहीं पढ़ती है और आपको मेरी मदद करनी है कि वो पढ़ना शुरू करे। मैंने स्टूडेंट से पूछा, बताओ आप कितनी किताबें पढ़ती हो? उसका जवाब था, मुझे क्यों बुक रीड करनी चाहिए? मैंने कहा, अगर आप रीडिंग नहीं करेंगी तो यह उम्मीद मत रखिएगा कि आपके बच्चे रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट का कहना था, मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे स्टडी करें ना कि रीड। मैंने कहा, रीडिंग और स्टडी एक तरह से समान ही हैं। जब मां नहीं पढ़ेगी तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। मैं मदर्स से गुजारिश करूंगी कि वो जरूर किताबें पढ़ा करें। ऐसा नहीं है कि पिता नहीं पढ़ सकते, दोनों बराबर हैं, लेकिन लॉजिकली मां ज्यादा जिम्मेदार होती है, मां का असर कुछ अधिक ही होता है। इसी वजह से तो हम कहते हैं मातृभाषा, फादर टंग आपने कभी नहीं सुना होगा। जिंदगी में हर चीज की कीमत है सिवाय मां के प्यार के, इसलिए मां की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आप अपने बच्चों से किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए, खास तौर पर तब जबकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने की आदत डालें तो आप भी जनरल रीडिंग शुरू कीजिए। रीडिंग वाकई बेहतरीन आदत है। यह बात भी उतनी ही सही है कि जो लोग अच्छा लिख सकते हैं वो पढ़ते काफी हैं। मैं इस उम्र में भी 2 से 3 घंटे पढ़ती हूं। शायद इसी कारण हम कर्नाटक में ही 60,000 लाइब्रेरी स्थापित कर पाए हैं। यह तभी संभव हुआ जब हमने समझा कि रीडिंग बेहद आवश्यक है। अगर किसी इंसान के पास भव्य बंगला है लेकिन एक किताब नहीं है तो उसे मैं अत्यधिक गरीब मानूंगी। आपके पास कुछ भी स्थायी तौर पर नहीं रहने वाला है। महाभारत में किसी ने अर्जुन से पूछा कि तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारी पत्नी भी बेहद खूबसूरत है, तुम राजकुमार हो, फिर क्यों तुम अपने गुरु द्रोण की इतनी चिंता करते हो? अर्जुन का जवाब था, उम्र के साथ खूबसूरती ढल जाएगी, राजपाट छीन सकता है, सोना चांदी तो कोई चुरा भी सकता है, ज्ञान ही है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता। ज्ञान तो ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है, इसलिए टीचर्स आप पर भी भारी जिम्मेदारी है। मैं माओ और टीचर्स से खास तौर पर कहूंगी कि रीडिंग की आदत बच्चों में आप ही डाल सकते हैं, मिसाल पेश कीजिए। किसी को रोल मॉडल की जरूरत नहीं है, 10 साल तक के बच्चों के रोल मॉडल उनके पेरेंट्स ही होते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। इसके लिए आपको घर से टीवी हटाना भी पड़े तो हटाइए। मैंने भी अपने बच्चों को 18 साल की उम्र तक टीवी नहीं देखने दिया। मैं उन्हें कहती थी कि तुम टीवी पर क्या देखोगे, मैं ही तुम्हें कहानियां सुना देती हूं। अगर टीवी है भी तो उसे देखने के वक्त को सीमित कीजिए, सप्ताह में 1 घंटा काफी होगा। पेरेंट्स बच्चों को केवल रेस्तरा में नहीं ले जाएं, उन्हें घुमाने जाएं तो कुछ सिखाने का उद्देश्य हो, ऐसी जगह जहां उन्हें ज्ञान मिले। कभी लिटरेचर फेस्टिवल लाया जा सकता है तो कभी म्यूजियम। शुरुआती 10 साल ऐसा कीजिए, बच्चों को इसकी आदत हो जाएगी। दोस्तों, उनके एक एक शब्द मैंने ज्यों के त्यों आपके सामने रखे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से क्या बातें आपको ठीक लगती हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बेकार की लगती हैं, जिन्हें आप रिजेक्ट करना चाहेंगे। ये पूरी तरह मैं आप पर छोड़ता हूं, और इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।